मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 फरवरी 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में अपना दाखिला कराया है। दोस्तों इनके नाम हैं पीहू कश्यप, आप टोंक राजस्थान से हैं। खुशबू सिंह, आपका गांव है पकरी, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और छत्रपाल जायसवाल, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो पीहू, खुशबू और छत्रपाल, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी सी बात उन स्टूडेंट्स से करना चाहूंगा जो अभी 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए भोपाल आने वाले हैं, स्पेशली उन्हीं से, क्योंकि आज की यह थोड़ी छोटी सी बात सीधे सीधे उन्हीं से ही संबंधित है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर मेरे दूसरे प्रिय श्रोता करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस जो मैं बात करने जा रहा हूं इसका संबंध जीवन से है, जीवन की पद्धति से है, एक सिस्टम से है। फ्रेंड्स, आप सब अब आने की तैयारियों में लग गए होंगे, दिमाग में एक द्वंद्व सा उठ रहा होगा कि जाना है और क्या क्या लेकर के जाएं और कैसे कैसे जाएं, और इन सब के बारे में मैं भी आपको सिलसिलेवार बताता चलूंगा, लेकिन आज ही नहीं आगे भी हम लोग इस इश्यू पर बात करेंगे, एक एक बिंदु को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। लेकिन याद रखिए कि मैं अब जितनी भी बातें कर रहा हूं इस संबंध में, खासकर स्टूडेंट्स से, वे एक प्रकार से प्रैक्टिकल हैं, केवल इसी के लिए ही नहीं है कि आप भोपाल आ रहे हैं, बल्कि हर जगह के लिए कि आप कहीं भी जा रहे हो या इसका संबंध जिस भी गुण से होगा उसे आप एक सार्वभौमिक और सार्वजनिक गुण मानकर चलें। तो मित्रों, आप तैयारियों में या तो लग गए होंगे या आपने फैसला किया होगा कि ठीक है जाना है, उससे एक दिन पहले तैयारी कर लेंगे, थोड़ी सी ही तो तैयारी करनी है। इसमें मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ठीक है अभी नहीं, 2-4-5 दिन और जाने दीजिए या तैयारी के 1-2 दिन पहले निर्णय ले लीजिए। और वो ये कि आप जो भी सामान अपने साथ लाना चाह रहे हैं उन्हें एक जगह रखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको कोई चीज याद आती है कि मुझे यह लेकर जाना है, तो आप एक जगह बना लीजिए और उस सामान को उस जगह पर रख दीजिए। आप अपना बैग उसके लिए चुन सकते हैं, अटैची चुन सकते हैं, या अपने स्टडी रूम के टेबल को चुन सकते हैं, कोई भी एक जगह। जैसे ही आपको याद आए आप उस सामान को वहां रख दें। ये नहीं कि ठीक है ये तो छोटा सा सामान है, उस समय भी याद आ जाएगा, हम भूलेंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम भूलते हैं और पता लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। आप अभी कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को जैसे ही याद आए आप वहां रखिए, पहली बात। जो दूसरी और आखिरी बात है आज मेरी, वह यह कि यह सब कुछ आप खुद कीजिए, ऑर्डर मत दीजिए। मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे ऑर्डर दे देते हैं, या ये समझते हैं कि ठीक है हमारी ये तैयारी जो है ना मेरी बहन कर देगी या मेरी माँ कर देगी या फलाना फलाना कर देंगे। लड़कियों के साथ तो ज्यादा ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को तो तैयारी मैं जहां तक मैं समझता हूं खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन लड़के जरूर हुक्म चला देते हैं कि ठीक है बहन तुम कर देना, माँ तुम कर देना। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, तैयारी खुद कीजिए। जो भी चीज आपको रखनी है, जो भी चीज आपको ले जानी है, मार्केट से खरीद करके लानी है, वो सारी चीजें आप खुद करें। और जो मैंने कहा मार्केट से खरीद कर लानी है, इसमें मित्रों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें और वह है मेडिसिन। आपके लिए जो मेडिसिन जरूरी होती हो वे मेडिसिन आप अपने साथ रख ले प्रिकॉशन के तौर पर। हो सकता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, जैसे कुछ लोगों को है सिर में दर्द हो जाता है तो उसके लिए आप क्या दवाई लेते हैं डॉक्टर से पूछ करके वो रख लें। किसी को पेट दर्द हो जाता है, किसी भी समय हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं, या हल्का फुल्का फीवर आ गया या गला खराब हो गया तो उसके लिए हम क्या करें। तो ये जो बहुत ही सामान्य सी बीमारियां होती रहती हैं आप उससे संबंधित दवाई रख लें, और ऐसा इसलिए ताकि इसकी वजह से बेकार में क्लासेस का वक्त आपका खराब न हो। देखिए ठीक है, आपको हल्का फुल्का फीवर है, आप क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन मन तो उस तरीके से नहीं लग पाएगा जिस तरीके से अदरवाइज लगता। तो बेहतर है इससे कि पहले कि ये फीवर बढ़े या ये जो सर्दी खांसी हुई है ये और ज्यादा बड़ा रूप ले ले, हम अभी से ही दवाई लेकर के उसे इसी स्टेज पर रोक लें, ताकि जो काम हम करने आए हैं उस काम का हम पूरी तरह से उपयोग कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी, और प्लीज ये इस पर ध्यान दें और करना भी शुरू कर दें। दोस्तों आज मैं आपसे मुख्य विषय के तहत जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उसकी व्यावहारिकता क्या होती है, इस पर कुछ बातें करूंगा। नो डाउट कि उसका रीजन आप समझ गए होंगे, लेकिन आइए पहले हम दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए जो पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया है भारत पर, ये तो अभी समाचारों में बहुत ही प्रोमिनेंटली है। इसे मैं बाद में जब मुख्य विषय पर बात करूंगा तब मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन कुछ दूसरी घटनाओं को मैं तब पहले स्थान आज देने जा रहा हूं। एक आपने न्यूज में सुना और अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार कुछ अध्यादेश लाने वाली है। किन किन मामलों में अध्यादेश लाने जा रही है, पहले तो हम उन मामलों को देख लेते हैं, जिसमें मैं दो बातों की चर्चा स्पेशली आपके सामने करूंगा जिन पर अध्यादेश आने हैं। पहला है ट्रिपल तलाक, तीन तलाक बोलने से तलाक का हो जाना। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून बनाने के लिए सरकार को कहा था, लेकिन कानून अभी तक नहीं बन पाया है। लोकसभा से तो यह विधेयक पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में सरकार पहले भी इस पर अध्यादेश ला चुकी है, और चूंकि अब संसद का सत्र खत्म हो गया है और अगर अध्यादेश नहीं लाया गया, आपको मालूम है कि अध्यादेश का जो पीरियड होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 6 महीने का ही होता है, तो वह कानून बन नहीं पाएगा, या कह लीजिए कि वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने फैसला किया है कि वह फिर से अध्यादेश लाएगी। देखिए सरकार ने फैसला किया है, न्यूज में आप सुनते हैं कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो देखिए वही बात है कि कैबिनेट मतलब सरकार। इसके बारे में हम लोग क्लासेज में बहुत विस्तार के साथ बात करेंगे कि दरअसल जिसे हम सरकार कहते हैं वह होती क्या है और वो किस तरीके से काम करती है, पहली बात। दूसरी जिस बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है वह है जो अवैध जमा योजनाएं होती हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए, और इन्हें कहा जाता है इनफैक्ट पोंजी स्कीम। मित्रों यहां जो पोंजी स्कीम है ये इस तरह की जमा योजनाएं होती है, जैसे आपने अभी पिछले दिनों सुना है कि कई ऐसी जमा योजनाओं के खिलाफ, जैसे शारदा चिटफंड फंड, ये लोग करते क्या है कि एक बैंक जैसी एक कंपनी बना लेते हैं, और कंपनी बनाने के बाद ये लोगों से कहते हैं कि आप हमें पैसा, हमारे पास पैसा जमा कीजिए और हम 3 साल में आपको दुगुना दे देंगे, 2 साल में दुगुना दे देंगे, 5 साल में 3 गुना दे देंगे। इस तरह से खूब हाई रिटर्न्स की ये बात करते हैं, और पता लगा कि लोग इनके झांसे में आकर के इनके पास पैसे जमा करा देते हैं, और इसके बाद फिर उन बिचारों को उनका अपना मूल धन ही वापस नहीं मिल पाता, ब्याज की तो बात छोड़िए, लोग लालच में आकर फंस जाते हैं। और आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में इस तरह की जो जमा योजनाएं हैं लगभग 978 कह लीजिए कि 1000 मामले हैं, और इस 1000 मामलों में से 325 केवल पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, 325 पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, और बेचारे गरीबों का पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है। तो इसे कहा गया है पोंजी स्कीम। इसका नाम पोंजी क्यों है, इसके पीछे कहानी एक यह है कि इटली का एक व्यक्ति था चार्ल्स पोंजी, वो ऐसे ही स्कीम चला करके लोगों के पैसे जमा करता था और उसे हजम कर जाता था, तो बोलचाल में अब उसी के नाम पर यह आ गया है पोंजी स्कीम। तो सरकार इस पर भी अध्यादेश ला रही है, यह भी जो विधेयक है लोकसभा में तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। मैं यहां एक बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर कोई भी विधेयक जो लोकसभा से पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा से या तो पारित नहीं हो सका है या यूं कह लीजिए कि वहां प्रस्तुत ही नहीं किया जा सका है, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, नई लोकसभा का चुनाव होगा, फिर नई लोकसभा आएगी, उसमें पता नहीं किस पार्टी की सरकार बनती है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, तो ऐसे में इन विधेयकों का क्या होगा? देखिए, ये विधेयक समाप्त हो जाएंगे, ये विधेयक समाप्त हो जाएंगे। हाँ, जब नई सरकार आएगी और उसे लगेगा कि नहीं, ये विधेयक बहुत आवश्यक है, तो अपने ढंग से वो फिर से विधेयक को लोकसभा में पेश करेगी या राज्यसभा में पेश करेगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल नए तरीके से शुरू करनी होगी। दोस्तों, एक खबर है कि स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने कुछ राहत की घोषणा की है, और उसमें यह है कि स्टार्टअप अब 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर एंजल टैक्स की छूट उन्हें मिल सकेंगी। हम लोगों ने एंजल टैक्स के बारे में इससे पहले बात की थी, तो अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता हूं। तो एक छोटी सी जानकारी है, उसे 25 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से देखिए काम करती है। फॉरेन पॉलिसी के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, कूटनीति, डिप्लोमेसी। यानी कि ये चीजें सीधे सीधे नहीं होती है, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर किसी की विदेश नीति का निर्धारण करती हैं और साथ ही साथ किसी देश के प्रति विदेश नीति का निर्धारण करती हैं। मतलब ये गजब के शतरंज की चाल की तरह होती है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसके रिजल्ट आगे आएंगे, सामने वाला समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने भारत पर जो आतंकवादी हमला किया था, उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, आपने सुना होगा, न्यूज में भी और अखबारों में भी काफी दिया है कि सेना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कश्मीर घाटी में बंदूक लेकर चला और यदि कहने पर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो उसे गोली मार दी जाएगी। और उन्होंने अपील की है माताओं से कि वो अपने बच्चों से कहें कि बंदूक लेकर बाहर न निकले, राइट? जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए फ्रांस ने सीधे सीधे ये कहा है कि वो यूएनओ में इस मामले को लेकर के आएगा कि पाकिस्तान और जो भी उसके जैसे मोहम्मद के जो हेड है मजूर मसूद अहमद या क्या नाम है आप देख लीजिएगा, कि उनको आतंकवादी घोषित, उसको आतंकवादी घोषित किया जाए। और फ्रांस पहले भी ऐसा कर चुका है, लेकिन चीन चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है तो वैसा नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब है कि घटना भारत पर घटी है, लेकिन फ्रांस उस मामले को यूएनओ में लेकर के जाएगा। डायरेक्शन देखिए, इसका मतलब है कि फ्रांस इस मौके का इस्तेमाल इस रूप में करना चाह रहा है कि वो भारत का शुभचिंतक है और भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद इसराइल का स्टेटमेंट देखिए, इसराइल ने भी कहा है कि इस बारे में भारत को जो भी मदद चाहिए इसराइल बिना शर्त देने को तैयार है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसराइल गए थे, इसराइल के प्रधानमंत्री हमारे यहां आए थे, दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत से समझौते हुए हैं। इसराइल इस मायने में अर्थ रखता, देखिए भले ही वो छोटा सा देश हो, अब हम कृषि टेक्नोलॉजी पर नहीं जा रहे हैं, जो यहां की जो एजेंसी है, खासकर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब इसराइल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छोटा सा देश है और चारों ओर अपने दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, इसके बावजूद उसके अंदर कोई आतंकवादी गतिविधियां उस तरह से नहीं होती, वो पूरे शान के साथ रहता है और लगातार डेवलप करता चला जा रहा है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के दम पर। तो इसराइल इस मायने में अर्थ रखता है। आपको मालूम है कि अमेरिका भी कह चुका है कि भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से कदम उठा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो यहां आप देखेंगे कि अमेरिका क्यों ऐसा कह रहा है। सीधी सी बात है कि अमेरिका और चीन में जो अभी तनाव चल रहा है उससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, जो ट्रेड वार चल रहा है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है, और अगर भारत पाकिस्तान का विरोधी हो जाता है तो सीधी सी बात है कि वो अमेरिका का निकटतम हो जाता है, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां उसके अपने हित इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका भारत के साथ अपने दोस्ताना संबंधों की अभिव्यक्ति करके इस घड़ी में सीधे सीधे वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए चीन को अपना निशाना बना रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए कूटनीति, काम करती है, वो जुड़ती चली जाती है। तो आप जब इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी करेंगे तो तैयारी करते समय इस पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होता है, और आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके तहत जो पड़ोसी देश हैं भारत के वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पाकिस्तान और चीन तो पड़ोसी देश है ही, इसमें से जो दो इस मामले को लेकर के चल रहे हैं, और साथ ही जो बड़े राष्ट्र हैं उनके साथ भी जो हमारे संबंध हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मित्रों, ये था आज के मुख्य विषय के बारे में। करंट कंटेंट के तहत आपको एक प्रोवाइड किया गया स्किल इंडिया का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक तरह से एक्सप्लेनेटरी है, समीक्षात्मक है, मूल्यांकन परक है, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये द हिंदू में छपा हुआ आर्टिकल था जो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया गया है। मित्रों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: कृष्णा पटेल, सचिन गुप्ता नवाबगंज उत्तर प्रदेश से, निशु राज देव नगमा सुल्तानपुर उत्तराखंड से, प्राची दीमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, प्रीति झा चंदन साहू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और सगुन चंद्र रस्तोगी लखनऊ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।